हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है समनीत कौर। और जैसा कि आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना ही होगा, जिसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ द मोशन चैप्टर के बारे में। हमने उस लेक्चर में बात की थी कि हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या इक्वेशंस करने वाले हैं। तो उसी तरह से अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, जो कि है 8.1 चैप्टर नंबर 8 मोशन। इसकी हेडिंग है डिस्क्राइबिंग द मोशन, मीन्स दैट कि अब हम मोशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे। हमने नॉर्मल एग्जांपल्स तो ले ली, जैसे हमने ट्रेन की एग्जांपल्स ली, बर्ड्स की एग्जांपल्स ली, एटम्स की एग्जांपल्स ले ली, पर हमको इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ अगर साइंस से पढ़ रहे हैं तो उसकी कोई साइंटिफिक वर्ड तो होता ही है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसको रीड करेंगे, इस पैराग्राफ को। तो हम रीड करते हैं, वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे उसने क्या बोला गया है कि हम कोई भी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए उसका एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, अगर हम आसान भाषा में समझें तो रेफरेंस पॉइंट को हम अपनी पिछली एग्जाम्पल्स के साथ जोड़े तो हम उसको कैसे बोलेंगे। अब देखिए, मैंने उस दिन एग्जाम्पल ली थी ट्रेन की, कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपकी ट्रेन चल रही है, आप उस टाइम पे कह रहे हो कि हम रेस्ट पे हैं और जो हमारे बाहर जो विलेज है या कोई ट्रीज है तो वो चल रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाता है, अब उस टाइम पे जो बाहर जो ट्रीज है या वो विलेज है वो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, कि हम उसके हिसाब से देख रहे हैं कि हम चल रहे हैं कि हम बैठे हैं, उसके हिसाब से देख रहे हैं। मतलब हम हिंदी में रेफरेंस पॉइंट को एक वर्ड दे सकते हैं कि उसके नजरिए से, उसके हिसाब से। तो जैसे कि हमने ट्रेन की एग्जांपल ली थी, हम तो एक्चुअल मोशन में है बट हमको क्या लग रहा है कि हम रेस्ट पे है और जो बाहर हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं वो मोशन में है। तो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, हमने उस नजरिए से देखा कि हाँ वो चीज मोशन में है, हम रेस्ट पे हैं, तो हमने उस चीज को एज एन रेफरेंस पॉइंट का नाम दे देते हैं। यही है साइंटिफिक वर्ड नेम, दैट इज रेफरेंस पॉइंट, मीन्स दैट किसी को देखने का नजरिया। अब जैसे कि आप क्लास में बैठे हो और आपकी टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही है और साथ साथ में चल रही है, मीन्स दैट आपको पढ़ा रही है और साथ साथ में चल भी रही है, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हो। आप उसको ऐसे देख रहे हो कि आपका जब हेड, जो आपका जो सर है वो चेंज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट आपकी मैम मूव कर रही है तो आप भी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। आपकी जो रेफरेंस पॉइंट क्या होगी, आप अपनी आंखों से मैम को देख रहे हो कि वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है या राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है। जैसे ही आपका हेड टर्न होता है तो वो मोशन आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो वही चीज होती है रेफरेंस पॉइंट, कि आपने उसको किस जैसे देखा है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि अब इसमें बुक में क्या एग्जाम्पल दे रखी गई है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय आर एग्जाम्पल। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑन द रेलवे स्टेशन। वी हैव स्पेसिफाइड द मोशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ में उसने क्या किया है, अब उसने यहाँ पे एक स्कूल लिया है और एक रेलवे स्टेशन लिया है। अब आपको उसने क्या, अब मान लो कि किसी बंदे ने पूछा है कि हाँ जी ये स्कूल जाना है और इसका रास्ता बताइए, और उसने बोल दिया कि आप रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर सीधा चला जाओगे तो वो स्कूल आपको मिल जाएगा। तो मीन्स दैट कि उसने रेलवे स्टेशन को एज एन रेफरेंस पॉइंट लेके स्कूल का एड्रेस बता दिया है, कि अगर आप रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर सीधा जाओगे तो आपको स्कूल मिल जाएगा। जैसे मान लो कि आप, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी जगह जाते हो जिसका आपको एड्रेस पूरा पता नहीं होता है, आप अंदाजे से जाते हो उस जगह पे, तो आप कई बार बीच में खो भी जाते हो या आपको रास्ता भूल जाता है, तो आप उस जगह पे कैसे पहुंचते हो, आप लोगों से पूछते हो। आप ऑब्वियसली लोगों से पूछोगे कि हाँ जी भैया मेरे को इस मॉल जाना है तो मैं कैसे जाऊं, तो भैया बोलेगा हाँ जी मैडम आप ना आगे से राइट गोल चक्कर आएगा तो आप उधर से राइट ले लेना, फिर आप थोड़ा सा सीधे जाना तो वहां पे आपको मॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो उस भैया ने कैसे समझाया आपको, आप उस भैया ने वो गोल चक्कर का रेफरेंस पॉइंट लेके आपको समझा दिया। तो मीन्स दैट कि उस टाइम पे आपके लिए जो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, वो गोल चक्कर। आप गोल चक्कर से जैसे ही घूमोगे और जैसे ही सीधा जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मॉल आ जाएगा। तो सिमिलरली वो चीज क्या होगी आपके लिए, रेफरेंस पॉइंट। और यही चीज क्या बताती है, मोशन। आप तो ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे थे, मोशन नहीं हुई ना, तो आपको मोशन कैसे डिफाइन कर दिया उससे, उसने साइंटिफिक लैंग्वेज में मोशन जो है आपका रेफरेंस पॉइंट से डिफाइन किया। मीन्स दैट कि जो मोशन है उसने साइंटिफिक टर्म में डिफाइन कर दिया रेफरेंस पॉइंट। जैसे इस बुक में रेलवे स्टेशन की एग्जांपल दे रखी है, आप डेली लाइफ में देखते ही हो। जैसे मान लो कि आपको आप अपने नानी के घर जाना है, ठीक है, तो आप नानी के घर कैसे जाओगे, आपको रास्ता पता होगा तभी जाओगे ना। मान लो कि आपको रास्ता भूल जाता है तो आपको थोड़ा सा पॉइंट याद होता है कि हाँ ये एक पेड़ आएगा, मतलब ऐसा बरगद का पेड़ आएगा रास्ते में, और उस बरगद के पेड़ से मुझे राइट टर्न लेना है तो फिर मेरा नानी का घर आ जाएगा। तो उस टाइम पे वो बरगद का पेड़ आपके लिए क्या हुआ, वो बरगद का पेड़ आपके लिए रेफरेंस पॉइंट हुआ। तो यही चीज है, रेफरेंस पॉइंट इज अ साइंटिफिक नेम, मीन्स दैट इसको साइंस ने, साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है। कि इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने से अच्छा है कि आप एक छोटा सा नाम ले लो, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जैसे ही स्पेसिफाई करोगे आपके पास मोशन की पूरी डेफिनेशन आ जाती है। सो आगे पढ़ते हैं, वी कुड हैव चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आर कन्वीनियंस। जैसे मैंने आपको बरगद के पेड़ का रेफरेंस पॉइंट बताया, ठीक है, फिर उसके बाद मॉल का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जैसे नानी के घर का एग्जाम्पल दिया। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज, जैसे आपको अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जाए, आपको अपनी जगह तक लेके जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो चीज आपके लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाती है। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट कॉल द ओरिजिन। अब यहाँ पे उसने ओरिजिन दे दिया है, मीन्स दैट ओरिजिन तो पता ही होता है आपको कि कहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, बरगद के पेड़ से आप घूमोगे तो आपको नानी का घर मिल जाएगा, गोल चक्कर से घूमोगे मॉल आ जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो गया। तो वही चीज, जैसे आप जब तक आप उस चीज को गोल चक्कर से घूमोगे नहीं तब तक मॉल आएगा नहीं, तो जब आप घूमोगे तो मॉल आ जाएगा। तो मीन्स दैट कि वो रेफरेंस पॉइंट हो गया और वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इस पूरे पैराग्राफ में उसने मोशन को डिफाइन कर दिया गया है इन अ साइंटिफिक वर्ड कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। और जब भी आपको मोशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो जरूर मेंशन कीजिएगा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस लाइन को टिक कर सकते हैं या फिर आप अपने इसको कॉपी में लिख सकते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बेसिक्स क्लियर करने में। तो एनसीईआरटी बुक की हर एक लाइन में से कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आता है, तो जो अभी जो लाइन में पढ़ने वाली हूँ उस लाइन को आप नोट कर लीजिए या बुक में मार्क कर लीजिए। तो वो लाइन है, वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हम कोई भी लोकेशन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कोई रेफरेंस पॉइंट होगा तभी हम उसको स्पेसिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस चैप्टर में हम बेसिकली किसको फोकस करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन को। आगे सर्कुलर मोशन भी आएंगी, बट पहले हम फोकस करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है। सो इसको हम रीड करते हैं, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हम सीधा चल रहे हैं तो वो सबसे आसानी वाली मोशन होते हैं। जैसे हमको मान लो कि बार बार गोल चक्कर काटने हैं या हमको कहीं बार बार टर्न्स वगैरह लेने हैं, तो वो मोशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म की मोशन रही रहती है, वो थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की मोशन रहती है और उसको कैलकुलेट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हमको मोशन स्ट्रेट लाइन में दी जाए तो वो मोशन जो होती है वो बहुत आसानी से समझी जाती है और उसको बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। सो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जांपल। अब यहाँ पे बुक एग्जांपल लेने वाला है, कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। आप सभी स्टूडेंट्स अपने पास एक कॉपी रखिए, कॉपी पेन रखिए, क्योंकि इसके लिए आपको एक डायग्राम बनानी पड़ेगी और जब तक आप वो डायग्राम नहीं बनाओगे आपको वो एग्जाम्पल समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी और समझाऊंगी वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाएं। तो पढ़ते हैं, कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे हम एक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में पॉइंट्स लेंगे। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड टू बी एज इट्स रेफरेंस पॉइंट. अब एक पर्सन जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला है और वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉइंट ओ से. तो पहले आप अपनी कॉपी पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, और जहां से वो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट को आप ओ पॉइंट दे देंगे, मतलब कि वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. ओके तो उसके बाद उसने कहा गया कि लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट इंस्टेंस. ओके उसके बाद उसने तीन डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं, ए बी एंड सी, जैसे कि बुक में दिखाए दिए गए हैं कि 0 से लेके 60 किलोमीटर तक उसने एक लाइन ड्रॉ की है. बुक में इतनी लंबी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है आपको, बस इतनी ही लंबी लाइन ड्रॉ करनी है कि ये सभी पॉइंट्स आपकी कॉपी में आ जाए. ठीक है, ये नहीं कि आप पेंसिल से लेके और एक बड़े ही मार्कर ये कहते हैं मेरिंग टेप से लेके आप लाइन ड्रॉ करिए. नहीं, हमको पूरी 60 किलोमीटर नहीं चाहिए लाइन, हमको अपनी कॉपी पर सिंपल ड्रॉ करना है एक लाइन. तो जैसे कि आपने ड्रॉ कर लिया होगा और आपने ओ पॉइंट अपना रेफरेंस पॉइंट भी दे दिया होगा, उसके बाद आपने उसमें उस लाइन में डिफरेंट पॉइंट दे दीजिए 0 से लेके 60 तक. ओके और जैसे ही उसने कहा गया एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी. उसने कहा कि पहले जो ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हो रहा है वो पहले, ठीक है, वो सी से लेके बी तक गया, फिर बी से लेके ए तक गया. ठीक है, देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस द सी थ्रू बी. ठीक है, अब वो सी से स्टार्ट हुआ, अब वो सी पे क्या था, सी पे 25 था, अब वो सी से स्टार्ट हुआ बी तक गया, फिर बी पे गया, फिर बी से ए तक गया. ठीक है, सिमिलरली तो व्हाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 35. अब ये 35 कैसे आया, अगर आप सोचो कि कैसे आया 35, तो मैं बताती हूँ 35 कैसे आया. जैसे कि जो पर्सन ने अपनी जो जर्नी है वो 25 से स्टार्ट की, 25 पे क्या है सी, 25 से स्टार्ट की, पहले वो बी पे गया फिर बाद में वो ए पे गया. ठीक है, अब वहां पे ए पे गया. ठीक है, तो जो हमारे जो उस टाइम पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, सी हमारा 25 है और ए हमारा 60 है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 35 किलोमीटर. ठीक है, अब यहाँ पे उसने आगे क्या लिखा है, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू द पाथ 85. अब वो कह रहा है कि ये पाथ 85 किलोमीटर नहीं है. वो कैसे 85 किलोमीटर कैसे आता, 85 किलोमीटर कैसे आता, 85 किलोमीटर भी आ सकता था क्योंकि हम पूरा डिस्टेंस अगर उसका काउंट करते, बट हमको यहाँ पे डिस्टेंस काउंट करना ही नहीं था, यहाँ पे हमको काउंट करना था डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट की, कि सी से चला ए तक आया तो दोनों में डिस्टेंस क्या बना, इट्स 35 किलोमीटर, मतलब सी से लेके ए तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 35 किलोमीटर. उसके बाद उसने लिखा है फर्दर वी विल notice the magnitude displacement of the course of motion may be zero but the corresponding distance is covered is not to be zero. अब यहाँ पे बोला है कि displacement zero भी आ सकती है. कैसे आएगी displacement, displacement कैसे आ सकती है, distance अगर zero नहीं हो सकता तो displacement कैसे zero हो सकती है. तो displacement का मतलब होता है means that shortest distance that you travel, मतलब सबसे छोटा रास्ता जो आपने travel किया. पर यहाँ पे ट्रैवल क्या किया आपने, जब हम दोबारा इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे, ठीक है, उसने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है. जैसे मैं अभी पिछली स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करूंगी क्योंकि मैंने पहले आपको ये समझाया नहीं था, मैंने इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि अगर मैं पहले ही आपको समझा देती ये सारी चीजें तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस का पुटअप नहीं होता, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते. अब यहाँ पे उसने पहले यहाँ पे बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है बट ऊपर उसने डिस्प्लेसमेंट 35 दे रखी गई है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट अप होना चाहिए कि हाँ नीचे जीरो दे जीरो बोल रखा है ऊपर 35 बता रहे हैं तो रीजन क्या है, व्हाई. तो यहाँ पे क्या लिखा है, पिछली स्लाइड में मैं रीड कर रही हूँ, एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए. सी से बी पे गया फिर बी से ए तक गया, यहां तक समझ आया. देन इट मूव्स बैक along the same path and reaches C and B. अब वो A से B तक गया, फिर B से C तक आया. Means that कि जहां से वो निकला था वहीं पे वो वापस आ गया. तो क्या हुआ, जहां से वो निकला था वहीं से वो वापस आ गया. Means that कि उसकी displacement zero हो गई. Because displacement and distance ये दोनों ही बहुत अलग अलग क्वांटिटीज है, ये आपस में मिक्स मत करना. इन दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग है. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि वो अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है. वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितना बड़ा रास्ता अपनाया, आपने क्या किया, आप सीधा गए, टेढ़ा गए, जैसे मर्जी गए. वो डिपेंड करती है कि हमारा शुरू का रास्ता और खत्म कहाँ पे हो रहा है वो रास्ता, उन दोनों का डिस्टेंस क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है. अब इस एग्जांपल में उसने क्या किया, वो सी से ए तक गया, फिर ए से सी तक वापस आ गया. तो क्या हो गया, वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया. तो इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया मींस कि वो जहां से निकला वहीं पे वापस आ गया. तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो. मतलब कि जो बंदा जहां से निकला वहीं पे वापस आ गया, तो उस टाइम पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी हो जाती है वो हो जाती है जीरो. पर हम डिस्टेंस को ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं. डिस्टेंस जो होता है कि हमने कितना पाथ ट्रैवल किया, कितना हम चले हैं, वो सारा काउंट होता है. ठीक है, तो मींस दैट कि अगर हम सी से बी तक गए, फिर बी से ए तक गए, और ए से बी तक गए, और सी बी से सी तक आ गए, तो हमने इसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, अगर हम इसको काउंट करेंगे. जैसे हमने सी से ए तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 35. तो 35 का अगर हम डबल कर देंगे तो मतलब जितना गए थे उतना वापस भी आए, तो कितना हो जाएगा, 35 + 35, हाउ मच इट वुड बी, इट वुड बी 70. तो हमने उस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 70 किलोमीटर. तो हम अपनी कॉपी पे ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, आप लिखिए साथ में, द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू ए इज 35 किलोमीटर, एंड ए टू सी इज ऑल्सो 35 किलोमीटर. मीन्स दैट द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए सी टू ए एंड ए टू सी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. हेयर वेन वी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड रीचेज अगेन एट द इनिशियल पॉइंट, मीन्स दैट वी हैव द डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो. अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो जैसे कि मैंने पहले ही समझा दिया आपको, हम सी से ए तक गए तो 35 किलोमीटर आया, ए से सी तक गए तब भी 35 किलोमीटर आएगा. बट डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे. हमने इनिशियल से स्टार्टिंग की, फिर दोबारा घूम के हम इनिशियल पॉइंट पे आ गए, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, जीरो. इस टाइम पे जो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस टाइम पे जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा 70 किलोमीटर. ठीक है, तो ये चीज होगी हमारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. उसने आगे क्या लिखा हुआ है, इफ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट ट्रैवल बैक टू ओ, द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो. अब वो बोल रहा है कि अगर हम ओ से ए तक जाएं, फिर ए से ओ तक वापिस आ जाएं, मीन्स दैट ओ से ए तक गए, फिर ए ओ से ए तक आ जाएंगे. ठीक है, ए से ओ तक, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, क्योंकि जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से निकले और उसी वाइट में वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी जीरो. पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ओ प्लस ओ ए प्लस ए ओ इज इक्वल टू 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर. जितना गए थे उतना वापिस आए हैं, तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, 120 किलोमीटर. वही चीज हो जाती है कि अगर हम यहाँ से घर, अपने घर से नानी के घर तक जाए, मान लो कि हम नानी के घर तक गए हैं, तो वो रास्ता जो है हमारा 44 किलोमीटर है. ठीक है, तो 44 किलोमीटर हम जाने को गए, फिर हमको अपनी नानी के घर से अपने घर वापस भी तो आना है, तो हमने पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 88 किलोमीटर. पर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जहां से निकले थे वहीं से वापस आ गए, हम अपने अपने घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई, जीरो. ओके, आगे उसने क्या दे रखा है, आगे उसने बोला दस टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लोकेट द फाइनल पोजिशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल एट द गिवन टाइम. अब उसने यहाँ पे बोलते हैं कि हमने इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाते हैं, फिर फाइनल से लेके इनिशियल पॉइंट तक आते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो जाती है. अदरवाइज जो हमारा डिस्टेंस है उसमें हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जितना गए थे उतना वापिस आए, तो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं. तो ये सारे ही हमारे जो चीज़ें, ये हमारे सारे की सारी चीज़ें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल पोजीशन क्या होगी, हमारी रेफरेंस होगी, जहाँ से निकले वहीं पे वापस आए, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, रेफरेंस पॉइंट. आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. अगर आपने इसको अच्छी तरह से ड्रॉ किया होगा तो ये चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ आ गई होंगी. आगे उसने क्या दे रखा है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओ ए एंड ए सी दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर. अब उसने क्या लिया है, द टोटल लेंथ. अब उस ऑब्जेक्ट ने कितनी लेंथ कवर की है, अगर हम सिंपली देखें, पहले वो ओ ए से गया, ओ ए तो वो कितना डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर. फिर वो वापस आया ए टू सी, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 95 किलोमीटर. तो टोटल हमारा कितना हो गया, 95 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अब ये जो है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने. ठीक है, इसमें कहा गया है, आगे देखते हैं, टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट द डायरेक्शनल मोशन. देर आर सर्टेन क्वांटिटीज वी डिस्क्राइब स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यूज. The numerical value of the physical quantity is its magnitude. Okay? अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो numerical value के लिए ही बनाई जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो numerical value के लिए नहीं बनाई जाती हैं. और जो चीज़ें जो numerical value के लिए बनाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, magnitude. Magnitude का मतलब क्या हो गया, हमारा जो साइज है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड वो होता है कि जिसकी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो. न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स क्या, कि हमारे पास उसका कोई साइज हो. ठीक है, न्यूमेरिकल मीन्स कोई साइज हो, न्यूमेरिक की फॉर्म में हो. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसी एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, 35 है, 40 है. तो जो ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है. और जैसे हम कोई वेट मेयर करते हैं तो वो वेट मेयर भी हमारे पास तो होता है, हमारे पास वो मैग्नीट्यूड आता है. ठीक है, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ. हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप डिस्टेंस निकालिए, फाइनल पोजिशन जो हो हमारी वो सी हो और इनिशियल पोजिशन क्या हो हमारी, ओ हो. तो टोटल डिस्टेंस क्या निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या निकलेगा, 25 ओ से सी तक का. सो उसने क्या लिखा है, द डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि मैंने आपको क्या पीछे क्या बताया था कि इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करती है, अब एक और पॉइंट भी आ जाता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है. जैसे कि पहले हम घूम के गए थे, पहले हम पहले सी पे गए, फिर बी पे गए, फिर ए पे गए, फिर ए से बी पे गए, फिर सी तक वापस आ गए. पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम सीधा ओ से सी तक चले जाएं. तो यहाँ पे क्या लिखा गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये डेफिनेशन पेपर्स में काफी आती है. सो आप लिख सकते हैं, How the displacement is defined. So displacement is defined as the shortest distance measured from the initial to final position of an object is known as displacement. तो ये हमारी क्या displacement की definition हो जाती है. Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by the object? अब यहाँ पे question बहुत interesting आ गया है कि can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object. उसने लिखा, consider the example given in figure 8.8 को यूज करके हम इसका कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक हम मोशन कंसिडर करते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर, जो हमने डिस्टेंस देखा है वो है 60 किलोमीटर, एंड द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर, बिकॉज ओ टू ए जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड भी 60 है और डिस्टेंस भी 60 है। मैग्नीट्यूड हमारा जो है वो कैसे 60 होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी वो 60 कैसे होगी, बिकॉज यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्योंकि हम इनिशियल पॉइंट में वापस नहीं आए तो डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो नहीं होगी। अभी हम इनिशियल से फाइनल तक ही गए हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट के ऑब्वियस टाइम पे 60 किलोमीटर हो गई, और सिमिलरली जो हमारा डिस्टेंस है वो भी 60 किलोमीटर हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है, ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी, ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड इज 20, इट्स 85 किलोमीटर, मीन्स दैट ओ से ए तक गया फिर ए से बी तक आया तो कितना डिस्टेंस हो गया, इट्स 85 किलोमीटर। सो यहाँ पे उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता दी गई है कि ओ से ए तक गया फिर बी से वापस आया तो उसने हमारा प्रॉपर डिस्टेंस कवर कर दिया, कि जैसे कि 60 किलोमीटर गया फिर वहां से वापस आया तो टोटल ऐड करके उसका डिस्टेंस बताया गया है, तो वही चीज आती है। तो यहाँ से हमारे पास दो क्वांटिटीज निकल के आते हैं मैग्नीट्यूड, एक तो हमारी मैग्नीट्यूड हो गई, तो उसको हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि उसका हमें डिफाइन किया गया है कि द साइज द न्यूमेरिकल वैल्यू, साइज मीन्स मतलब साइज भी वही चीज होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी वही चीज होती है। और साइज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोई हम नंबर से ही डिफाइन करेंगे ना किसी के साइज को, तो साइज और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सीधा बोल सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, हमारे पास डिस्टेंस है एंड डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमको डेफिनेशन बता चुके हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। तो आगे हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी में लिखा गया है, टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप, ठीक है, एक मीटर स्केल ले लीजिए एंड अ लॉन्ग रोप ले लीजिए, ठीक है, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स ऑपोजिट कॉर्नर अलॉन्ग इट्स साइड्स। अब मान लो कि बास्केटबॉल ग्राउंड नहीं है आपके पास, तो आप घर का एक कोई भी रूम ले लीजिए, ठीक है, आप एक 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 कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए और दूसरे कॉर्नर तक जाना है आपको, पर आपको सारी वॉल्स का सहारा लेते हुए जाना है, मीन्स दैट आप शॉर्टकट नहीं ले सकते हैं। तो उस टाइम पे जब भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो कितना डिस्टेंस आएगा, ठीक है, वो आपको करके देखना है कितना डिस्टेंस आएगा। तो ये आपको करके देखना है कि आपने घर के एक कॉर्नर से स्टार्ट किया फिर आप दूसरे कॉर्नर तक गए तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने का, कि पूरा घूमने से अच्छा है कि आप कोई शॉर्टकट ले लें, ठीक है, कि आपको शॉर्टकट ले लें तो उसको क्या बोलेंगे, अगर हमने शॉर्टकट ले लिया इनिशियल से फाइनल पोजिशन तक पहुंचने के लिए तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है, कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट वी ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन क्या हो गई हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो उसका भी आपको जो आपको एरिया मीन्स दैट कि आपको वो मेजर करना है कि आपने कितना ट्रैवल किया है उस टाइम पे, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी कितना ट्रैवल किया है और लॉन्गर डिस्टेंस में भी आपने कितना ट्रैवल किया है। उन दोनों का डिस्टेंस निकालने के बाद आपको उन दोनों को उनका उनमें डिफरेंस क्या देखना है, आपने उनमें डिफरेंस क्या देखना है कि हाँ शॉर्टकट से गया और लॉन्ग कट से गया क्या कितना डिफरेंस आया और क्या डिफरेंस आया। तो ये एक्टिविटी आपको करके देखनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप होपफुली आप करोगे इसको, घर पे भी कर सकते हो, बाहर ग्राउंड है तो ग्राउंड में भी कर सकते हो, बट ग्राउंड में आपके लिए एरिया डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इससे बेटर है कि घर में ही कर लो, या कोई छोटा सा कमरा लेके उससे आप कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं, एक्टिविटी 8.4। तो इसमें बहुत ही सोशली मतलब कि आपकी नॉर्मली लाइफ का एग्जांपल दे रखा गया है, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस दैट इज शोन अ डिस्टेंस ट्रैवल, सच अ डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर। आपने मोटरसाइकिल देखा हो तो आपके मोटरसाइकिल के आगे एक व्हाइट कलर का कॉलम सा बना होता है, उसमें ना डिस्टेंस दिखाई देता रहता है हमेशा, जितना आप डिस्टेंस रोज ट्रैवल करते हो तो वो डिस्टेंस दिखाई दे रहा होता है हमेशा, कभी आप ध्यान से देखना या तो वो व्हाइट कलर का होगा या तो वो ब्लैक कलर का होगा, तो उसमें आपको रोज का जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वो दिखाई देता है। अ कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग्स एंड द इनिशियल रीडिंग्स ऑफ द ओडोमीटर इज 1850, मतलब 1850 किलोमीटर। ठीक है, तो अब किसी बंदे ने भुवनेश्वर से अपनी जर्नी स्टार्ट की और न्यू दिल्ली पे खत्म करी, ठीक है, तो उस बंदे ने क्या हो गया, जब उसने भुवनेश्वर से अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी तो उसने उस टाइम पे वो रीडिंग नोट कर ली होगी, ठीक है, कोई भी रीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो फिर जब वो दिल्ली पहुंचा, न्यू दिल्ली पहुंचा, तो उसने वहां की रीडिंग नोट कर ली कि हाँ मैं वहां से इतने में निकला था और अब इतनी हो चुकी है। तो उसने उन दोनों का जब डिफरेंस लिया तो उसके पास क्या आ गया, 1850 किलोमीटर, मींस उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब नीचे का दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द भुवनेश्वर एंड द न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड में उसने क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द भुवनेश्वर एंड द न्यू दिल्ली यूजिंग द रोड मैप। देखो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस तो पूरा आ गया, ठीक है, डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया कि 1850 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी उतनी होगी क्योंकि डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया उतनी ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि हम दिल्ली से भुवनेश्वर वापस नहीं गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि इनिशियल पे हम वापस आ गए तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, पर यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी उतनी ही आती है। आई होप आपको इन दोनों एक्टिविटीज समझ आ गई होंगी। सो अब हम इस पूरे पॉइंट्स को, मतलब कि जो आज हमने दो टॉपिक्स पढ़े इसको पूरा कंक्लूड करेंगे। तो पहले जब हमने डिस्क्राइबिंग द मोशन में हमने बात की, तो उसमें हमने बात की थी रेफरेंस पॉइंट की, मीन्स दैट कि हमने उसमें बात की थी कि रेफरेंस पॉइंट लेके हम मोशन को डिफाइन करते हैं। कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जहाँ से हम जर्नी स्टार्ट करते हैं वहीं से हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं कि अगर हम रेलवे स्टेशन से सीधा जाएंगे तो हमको स्कूल आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो हमारा रेलवे स्टेशन का हो जाता है वो हमारा हो जाता है रेफरेंस पॉइंट। अगर उसके बाद हम आते थे स्ट्रेट लाइन मोशन पे, ठीक है, तो इसमें हमने क्या बात की है कि हमने एक एग्जांपल ले रखी गई है ओ से ए तक की, ए से ओ तक की। इस पूरे पॉइंट्स पे हमने सिर्फ दो चीजें निकाली है, इसमें हमने निकाली है एक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने यहाँ पे नोट किया है कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, उनके बारे में बात की गई है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, बट जरूरी नहीं होता कि उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो, शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, लॉन्गेस्ट भी हो सकता है, कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिस्टेंस हम उसको काउंट करते हैं, जितना हम चले हैं उतना हम उसमें काउंट करते हैं। उसमें ये नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है, कुछ नहीं, जितना हम ट्रैवल करते हैं उतना हम नोट करते हैं। और इस पूरे में हमने यही बात की है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिर उसके बाद हमने बात की मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसमें दिया गया कि जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो वही चीज है कि न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स दैट कोई साइज आएगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है। हम किसी का वेट मेजर करते हैं तो उसमें भी तो कोई न्यूमेरिक चीज आती है, जैसे किसी का वेट है 75 किलोग्राम, मतलब कि केजी, तो वो भी तो हमारे पास एक मैग्नीट्यूड ही हो जाता है, ठीक है। तो इन पूरे दो टॉपिक्स पे हमने ये चीजें कवर की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे हमारे पास तीन न्यूमेरिकल्स हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि फर्दर कौन कौन सी मोशन होती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, गुड बाय।